प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया ना, तो रामानंद जी भी दुखी हो गए, उसको दर्द हुआ इस बात का। और कितने उलाना दे दिया, तुम मोमन के पालुआ तेरा जुलहाए के घर वासे, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास। कहता है कि तू एक मुसलमान के मोमिन, मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला, अरे एक धानक जुलाहे सूद्र के घर तेरा निवास है, तेरा जन्म है, वास है, और तू अज्ञानी अपने आप को भगवान बताता है। फिर क्या कहते रामानंद जी, कहते तू ढंग से बात कर। मान बड़ाई छोड़कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदमुखी एता तुम गठफैन। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे मैं आज आधीन। परमात्मा कहते हैं स्वामी जी मैं मान बढ़ाई यानी अभिमान नहीं कर रहा, मैं तो आपका दास हूं और अधीन हूं, बिल्कुल आपका बच्चा हूं, आपका दास हूं, पर मैं जो कह रहा हूं ना वह कति सच्ची बता रहा हूं, सब सत्य है। क्या बताते हैं, जात पात मेरे नहीं बस्ती है बिन थाम, बिना नीम के गांव है कहते वहां सतलोक में। जात पात मेरे नहीं बस्ती है बिन थाम, गरीब दास अनंगति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसे मटेरियल का नहीं है, तुम्हारे जैसे चाम रहित है, यह नूर का है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसू ऊपर रहता हूं अवगत सत्य कबीर। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और परमात्मा भी खुद कह रहे हैं कि मैं अधर बसूं ऊपर रहता हूं सतलोक में। अब क्या बताते हैं कि ए स्वामी जी पूरी सृष्टि का रचनहार सृष्टा मैं हूं, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, मैंने ही इसकी रचना करके अपनी शक्ति से इसको रोक रखा है, और मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में अधर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत्य कबीर। अवगत माने वो प्रोक्स, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में आपने पढ़ा कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्स है, गुप्त है, अवगत है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता, जिसकी गति से कोई परिचित नहीं है। तो यहां परमात्मा कहते हैं वो अवगत मैं ही हूं, मैं सत कबीर ही वो अवगत हूं, वो प्रोक्ष हूं। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह, दास ग्रीव सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग, कि मैं ही सर्वंग हूं। सर्वंग माने सर्वव्यापक वासुदेव, सबके ऊपर मेरा आधिपत्य है, वो परमात्मा मैं हूं। सुन स्वामी सत भाख हूं, सत कहता हूं। सुनो स्वामी जी, मैं सत कहता हूं। झूठ ना हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना, और सकल पर पंच, कि मेरे बिना जो जिनको भी तू भगवान माने बैठे हो वो सब नकली सांग है, परपंच है। चारों युगन में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीब दास गुरु भेद से लखो हमारी ठाऊं। पूरे संत के बताए गए गुड़ रहस्य तत्व ज्ञान से हमारे उस लोक को देखो, सतलोक को जानो। गगन सुन गुप्त रहूं, गगन सुन मैं गुप्त रहूं, ऊपर सतलोक में गुप्त में ही हूं। हम प्रगट परवाह, गरीब दास घट घट बसों, बिकट हमारी राह। कहते हैं मैं ऊपर रहता हूं और सबके प्राणियों के हृदय में भी मैं ही विराजमान हूं। अब एक से अनेक होने की सिद्धियां होती है। एकादे संत के बारे में आपने सुना होगा कि वो यहां भी देखा, किसी ने दूसरे शहर में भी उसी समय देखा। तो एक सिद्धि बहुचोल्यधार है, एक कुछ सीमाएं होती हैं कुछ संतों की, जो कुछ एक दो शरीर अलग से बना सकते हैं समरूप। और परमात्मा में ऐसी सिद्धि है, वो असंख्य रूप बना सकते हैं। और दूसरा ये उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य ऊपर है और 100 घड़े भरकर रख दो पानी के मटके, और प्रत्येक में सूर्य दिखाई देंगे न्यारे न्यारे, और वो एक होते हुए भी, ऐसे परमात्मा हमारे साथ अभेद रूप में भी रहता है। गगन सुन मैं गुप्त रहूं, हम प्रगट परवा, वहां गुप्त रहता हूं और तेरे सामने प्रगट बैठा। गरीब दास घट घट बसूं, बिकट हमारी राह। गोता लाऊं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अपनात्मा, हमने इस परमात्मा की अमर कथा के साथ साथ यथार्थ ज्ञान ज्ञान से परिचित भी होना है, ताकि हम जो साधना कर रहे हैं वो हमारे हृदय में ये समाई रहे कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य है, झूठ नहीं है। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अब ये प्रमाण वेदों में देंगे आपको कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान देता है, सही ज्ञान समझाता है। तो फिर के कसर रह जाएगी भगवान की पहचान में, कोई त्रुटि नहीं रहती, और आत्मा फिर अपने परमेश्वर को पहचान के चिपक जाएगी। जैसे बालक हो ना, छोटे से बालक ने पिताजी गोदी में ले रहा हो और स्नान करन लाग जा किसी घाट पे, और उस बच्चे ने जल में छोड़ दे के नाले बेटा, वो डरता फिर दूना चिपट जाकर अपने पिता के, वो नीचे ना उतरा कि डूब जाऊं मैं। तो ऐसे जब आपको ये पहचान हो जाएगी कि हमारा संरक्षक पिता यही है, परम पिता यही है, तो आप ऐसे चिपक जाओगे, फिर पैर नहीं धरोगे नीचे, कदे फिर डूब जाए इस बहुजल के अंदर। तो इसके लिए आपको कुछ प्रमाण देते हैं ऋग्वेद के। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, परमात्मा कह रहे हैं कि मैं सतलोक से चलकर आता हूं, वहां से गोता मारता हूं, ऐसे एकदम जैसे जल में डुबकी लगाते हैं, और अपने श्रेष्ठ आत्माओं को, हीरे लाल मोतियों को, अच्छी अच्छी आत्माओं को खोज रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, जैसे जल में गोता मार के मुरजीवा यानी गोताखोर और नीचे से वस्तु ढूंढ कर लाता है। कहते ऐसे मैं चलकर आता हूं, सेकंडों में गोता मारूं, डुबकी लगाता हूं, स्वर्ग में पहुंच जाता हूं, फिर पाताल में एक सेकंड में पहुंच जाता हूं, और ऐसे अपने पृथ्वी पर आ जाता हूं। ऐसे गति करके मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा होता हूं, श्रेष्ठ आत्मा को। देखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही जलद किए हुए हैं, अनुवाद है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये फोन नंबर है इनके, ये फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली। फोन नंबर ये इनकी है। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 86 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में और मंत्र नंबर 26 में यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके रास्ते सरल कर देता है, आसान भक्ति विधि बताता है, उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का वहां रूप तेजो में है। एक ब्रह्मकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी एक ब्रह्मकूप की रोशनी है, तो हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते। अपना हल्का तेज पुंज का अन्य रूप बनाकर वो परमात्मा यहां आता है। परमात्मा करता हुआ अपने, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का बना के, वह कांतिमान परमात्मा। यहां इन्होंने कवि लिख दिया, इसका ये लिखना था कबीर देव, वो कबीर साहब, हम कबीर साहब कहें और संस्कृत में उसको कबीर देव लिखा जाता, कबीर देव लिखना था यहां। वो कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, यानी श्रेष्ठ आत्माओं को, भक्तों को प्राप्त होता है। उद्देश्य क्या होता है? वो परमात्मा कहां रहता है, ये अमित न लेंगे। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक स्थान पर रहता है, एक देशीय है, धूलोक के, जो परमात्मा धूलोक के उन तेजों में लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब हम आपको दिखाते हैं, यह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। इस 96 में मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मन, हे परमात्मन सरोपरी रहस्य श्रेष्ठ, या नाम का इन्होंने गलत अर्थ किया है, श्रेष्ठ जो नाम, श्रेष्ठ नाम, ये नाम का नाम ही लिखना था, जो आपका नाम है, तुम्हारी संज्ञा नहीं, तो जो आपका नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। यहां देखिएगा 17वें में क्या कहा है कि वो परमात्मा जो शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती विहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना कबीर देव, ये कबीर, कबीर देव संत सोम पवित्र अत्यतिरेभन, ऊंची स्वर में आवाज कर करके वो शिशु रूप धारण करके आने वाला परमात्मा अपने वहां अपने जानबूझकर प्रकट होता है किसी उद्देश्य से और अपने यथार्थ ज्ञान को बड़े प्यार से सुनाता है। और कैसे सुनाता है? कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा। इन्होंने इस कबीर गिरभी का क्या लिख दिया, ये कबीर ऊपर रह लगा हुआ है इसका, देखो रह, कबीर गिरभी, इन्होंने कवि बना दिया, कवि और गिर भी माने वाणी द्वारा, यहां लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा और कविता से कावेना कविताओं से उसकी स्तुति कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से लोकोक्तियों के माध्यम से वो बोलता है और वो अमर परमात्मा होता है। वो कबीर हो कबीर देव है वो कबीर देव है। यहां पर ना ये दो बार कबीर है तो कबीर गिर भी काविना कबीर संत सो वो संत रूप में प्रकट अमर परमात्मा कबीर देव कबीर वाणी द्वारा काविना यानी कविताओं के माध्यम से अति ऊंचे स्वर में रेभन माने ऊंचे स्वर में इन्हीं के द्वारा रेभन माने गर्जता हुआ रेभन सन ऊंची आवाज में बोलता है। वो कहां रहता है 18वें में उसका कबीर नाम है ये क्लियर हो गया ऊपर कि वो कबीर कबीर देव है। ये 18वें में वो कहां रहता है ये बताया गया है। तृतीयम धामम वो तीसरे धाम में रहता है यह अनुवाद इसका। अब 18वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 18 में क्या कहा है कि वो सोम स्वरूप परमात्मा वो अमर परमात्मा सोम माने अमर पालन की इच्छा करता हुआ यानी धारण पोषण करने सबका धारण पोषण करने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 से संबंधित है। पालन की इच्छा करता हुआ यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए हुआ जो महान वह परमात्मा जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देव्यान पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है तृतीयम धाम तीसरे धाम में है तीसरे धाम में विराजम वो विराजमान है। इन्होंने ज्ञान योग्य उड़ा दिया उड़द भूल गए ये करियर लिख दिया तीसरे धाम में विराजमान है और यहां लिख दिया विराजमान जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला अड़ंगा उड़ा दिया। इसी तरह है कि वो तीसरे धाम में तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है रहता है और यहां स्पष्ट है इसमें देखो मंडल नंबर 9 सुख 86 के मंत्र नंबर 27 में ये स्पष्ट लिखा है कि वह प्रकाश पुंज परमात्मा जो परमात्मा ध्रुव लोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है या ज्ञान योगी ना लिखा परमात्मा है ना एक जगह बैठा है तो इसमें भी यही है ये गलत अड़ा दिया अनुवाद गलत कर दिया। अब आप देखिएगा वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है। अब 82 के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 के और मंत्र नंबर 1 में नीचे क्या लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबका जन्मदाता सबको रचने वाला परमात्मा प्रकाश रूप यानी तेज पुंज का शरीर है उसका सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों के हरण करने वाला वह राजीव राजा के समान दर्शनीय है देखने योग्य है साकार है राजा के समान दर्शनीय है देखने योग्य है साकार है अंडरस्टैंड बिल्कुल क्लियर है इसमें। वह पृथ्वी लोक आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को श्रेष्ठ भक्त को अपने हीरे मोती लाल को जो दृढ़ भक्त है यानी पक्का भक्त है उसकी बात को आगे सारे संसार में भेज दे उनको मिलता है भक्त उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उनको मिलता है कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है यानी जिस प्रकार बिजली गिरा करे किस पे जैसे उस जिस पर वो गिर सकती है जिससे उसका कनेक्शन सही फिट हो जाता है। अब बिजली उड़े वहीं गिरती है जहां वो गिर सकती है जहां उसका उससे कनेक्शन हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा अपने उस उन प्यारी आत्माओं पर ही वो आकर्षित होता है जो उनके ज्ञान ने आगे बढ़ा सकें और जो कान्ना पे घटाले विरोध करें फिर उन तो भगवान मिले किसके लिए जाके कि जो दृढ़ भक्त हैं वहां से गति करके आता है अपने सतलोक से, और जो दृढ़ भक्त हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनको प्राप्त होता है। कैसे होता है? जैसे बिजली जैसी गति से, जैसे बिजली चमक दे ही एक सेकंड में आ जाती है, ऐसे ही परमात्मा चलता है उनको मिलने के लिए। आगे देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2। वो किस लिए आता है परमात्मा, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्लियर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, हीरे मोती लालों को मिलते हो, ढूंढते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। हमारे कहते हैं जहां मेरी चर्चा होती है ताम गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। आप कबीर देव हैं, या लिख दिया आप सर्वज्ञ हैं, नहीं यहां कबीर देव लिखना चाहिए था, इन्हीं के द्वारा का अनुवाद दिखाते हैं आपको। पुणात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, और इस ज्ञान से आप जी को परिचित कराना इस दास का प्रथम कर्तव्य है। यदि आप इससे परिचित होते तो दास आपको बड़े थोड़े से समय में, एक घंटे के अंदर ऐसा मौखिक ज्ञान दे देता कि आप गदगद होकर चले जाते। लेकिन उस मौखिक ज्ञान को आप स्वीकार कर ही नहीं सकते, उसको स्वीकार कराने के लिए या सिरंज लगानी पड़ती है, वह दवाई इंजेक्शन अंदर पहुंचाने के लिए, यह सदग्रंथ रूपी सिरंज आपके, इनके माध्यम से आप उस दवाई को ग्रहण कर सकते हो। जैसे कैप्सूल कड़वा होता, उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोट अलग से बना देते कवर, फिर वो पानी गेल अंदर चला जाता है। तो इसी प्रकार ये सदग्रंथ आपको दिखाकर आपको ऐसा तैयार कर देंगे, फिर आप इस कड़वी दवाई को फाक के अपमरण लग जाओगे। इसलिए रह रहे कर आप दिखाते हैं कि जहां इन्होंने किया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 1 में, यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और ये 40 के 40 अध्याय महर्षि दयानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। लेखक नहीं है ये, केवल अनुवादक है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली। ये 36वां अध्याय है, 63 अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में, यहां लिखा है यजु रच वाचम च पधे मन यजु परपधे, रजु वाच परपधे मन यजु परपधे, यजु। अब इस यजु, यहां पर जो यजु लिखा है, दो अपसर्ग लगा दिए, तो इसका अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, और इसका यजु का अर्थ कर दें तो फिर समझ में नहीं आओ, अनुवाद गलत है। तो इन्होंने दयानंद जी ने सही किया अनुवाद, यहां पर इसका यहां अनुवाद किया है कि यजुर्वेद को, तो इसने आगे सही लिख दिया। यजु ब्रैकेट में संस्कृत है, और इसको हिंदी करते समय यजुर्वेद लिखना अनिवार्य है, नहीं तो फिर क्या समझेंगे हम इसको, क्योंकि है यजु, यजु का अर्थ कर दे यजीय सतुतियां, तो यजुर्वेद वो बुक के बारे में जानकारी नहीं हुई, तो ये बुक के बारे में, उस पवित्र होली बुक के बारे में जानकारी है। यजु, यजु माने यजुर्वेद, हम यजुर्वेद का अगर यजुर्वेद, तो ऐसे ही जहां कवि ये अपसर्ग लगा के कवि लिख देना, हमें लिखना पड़ेगा कबीर देव, उस कबीर देव की महिमा गाई जा रही है, वो कभी हम कबीर साहब कहने लग गए उसने। फिर आइए ऋग्वेद मंडल नंबर 9। अब आइएगा ऋग्वेद, अब हम ऋग्वेद को फिर ले रहे हैं, यजुर्वेद को रख दिया ये सिद्ध करने के लिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञों में यानी धार्मिक अनुष्ठानों में को प्राप्त होते हो, वहां पहुंच जाते हो। आप कबीर देव हैं, यह लिखना चाहिए, आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर देव माने साहब परमेश्वर, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव को कबीर साहब, कबीर देव, कबीर साहब। आप कबीर देव हैं, यह लिखना चाहिए था कबीर देव। शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में फिर स्पष्ट किया है, मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में, ये मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या लिखी है, देखो यहां लिखा है, पर कबीर देव, कबीर देव वितय, ये कबीर देव लिखा सीधा ही, पर यानी वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, वह परमात्मा मेधावी है, इसका अर्थ लिख दिया। यदि यहां पर जब यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो कहीं पर, उसका अर्थ कर दे, यजुवस्तुतियां सतुतियां नहीं, यहां लिखना पड़ेगा, जैसे वह परमात्मा कबीर देव है, बस वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। विद्वानों की तृप्ति के लिए, जिनको भगवान की चाह है, ज्ञान की इच्छा है, उनको तृप्त करने के लिए ज्ञान से ज्ञान को देता है, और सहनशील है। ओह, कितना तंग किया था भगवान को, फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, दाता ने, वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। अपनात्मा रामानंद जी ने सोचा, इतने दृढ़ता के साथ ये बच्चा बोल रहा है, इसकी बात में बहुत कसक नजर आ रही है, आम बालक ऐसी बात नहीं कह सकता, फिर भी सोचा पहले अपना क्रियाक्रम कर लेता हूं, उसके बाद इस तरह आगे प्रश्न करूंगा। तो उसने कहा, बच्चा तू बैठ जा थोड़ी देर, मैं अपना नित्यक्रम कर लेता हूं। नित्यक्रम कैसे करता था, एक मानसिक मूर्ति बनाता था भगवान विष्णु की, जैसे कल्पना करते हैं आंखें बंद करके, और वैसे जो विष्णु साधु क्या करते हैं, भगवान की विष्णु की साकार मूर्ति रखते हैं पीतल या पत्थर की, और उसको क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, धोती एक बनी बनाई मिल रही इनके कपड़े, उस धोती को बांध देते हैं और ऊपर एक वस्त्र पहना देते हैं, गले में माला डाल देते हैं, कंठी बोलते हैं एक तुलसी के मणिये की, तिलक लगा देते हैं, मुकुट रख देते हैं, प्रतिदिन ऐसा करते हैं, और अगले दिन फिर उन कपड़ों को उतार देते हैं, मुकुट नीचे रख देते हैं, कंठी भी निकाल देते हैं, फिर नहाते हैं भगवान को, स्नान करा के अगले दिन फिर वस्त्र पहना देते हैं, सभी श्रृंगार पूरा कर देते हैं, तो वो पूजा सही मानते हैं। रामानंद जी ने उस दिन क्या किया, ऐसे ही कपड़े उतार दिए और फिर भगवान को कल्पना करके मूर्ति मन मन में मानसिक सेवा कर रहा था, मानसिक पूजा कर रहा था, वस्त्र उतार के और नवा के और कल्पना में जैसे सोपन होया करे, ऐसे ही फिर उनको मुकुट रख दिया, कपड़े कुपड़े पर आ गए, तिलक भी ला दिया। उस दिन वो एक मणिये की कंठी डालना भूल गए, जैसे वो रखी दिखा अलग से, भगवान का गला खाली जैसे सोपन में दिखाई देता है। तो स्वामी जी ने सोचा, बात बात बिगड़ गई, मुकुट रख दिया, और मुकुट रखने के बाद मुकुट उतारा नहीं जा सकता, उस दिन जब मुकुट उतार दिए तो पूजा खंडित, और कंठी ना डली तो भी पूजा दूरी खंडित होगी। वह कंठी भी होनी चाहिए थी और मुकुट भी नहीं उतरना चाहिए उस दिन। तो उसने सोचा इस माला को ऊपर मुकुट के ऊपर से डाल देता हूं। वह मुकुट में अड़गी, सपने में जैसे होता है ऐसे। अब बड़ा दुखी हुआ। अब रामानंद जी कह रहे हैं, भगवान आज मेरे से कौन सी गलती बन गई, जीवन में पहली बार मेरे से भूल लगी है, आपका श्रृंगार आपकी पूजा अधूरी होगी, मुझे माफ करना परमात्मा, बहुत दुखी हो रहे। तब उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने बाहर पर्दे से बाहर बैठे बोले, रामानंद जी स्वामी जी इस माला की गुंडी खोल लो या गांठ खोल कर और फिर गले में बांध कर गांठ दोबारा ला दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। अब ना कोई मूर्ति साकार बाहर दिखाई दे, पर्दा हटा के देख लिया होगा। अब रामानंद जी ने सोचा, या तो भाई मेरे मन की बात बता दी, मैं तो मन में स्वप्न सा देख रहा था। इतने में कहते हैं ज्ञानकार गांव का तो चमका ऐसा उसे, और कहते हैं एक कह चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। अपुण्यात्माओं, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है ये मन साधो दीजिए तो गोविंद पिये। लोक लाज मरिया जगत की तिर जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। रामानंद जी ने कहा तो एक मर्यादा, इतना दृढ़ हो रहा था, इतना कट्टर छुआछूत करने वाला व्यक्ति, और आगे सामने पूरा ब्राह्मण समाज बैठा हजारों की संख्या में। अब उसने देखा कि सामने भगवान खड़ा और एक तरफ समाज खड़ा। वो ब्राह्मण थे रामानंद जी, उसने समाज नहीं देखा, जात पात नहीं देखी, उन्हें भगवान दिखाई दिया और पर्दा फेंक दिया उठा करके, डोडी का जो आगे कर्टेन ला रखा था एकदम फेंक के उसको बाहर आया। रातें बच्चे का नुह से अपने सीने से लगा दिया और क्या कहने लगे, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुटमाल परवेसे, गरीब दास गति कौन लख है तेरा कौन वर्ण के बेख। रामानंद जी ने कहे, भगवान आपने मेरे मन की बात बता दी, फिर तूने भगवान कैसे मानना, कोई व्यक्ति किस रूप में खड़ेगा और किसके किस वर्ण में, शूद्र वर्ण में है? और एक बालक रूप में खड़े हो धोती बांधे, आपकी गति को आपकी महिमा को आपको कौन पहचान सकता है परमात्मा। तो उसी समय रामानंद जी ने देखा के देखा के ओहो, कि परमात्मा का शरीर तो ऐसा है जैसे रुई का होया करे। तो क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेसे, गरीब दास गति को लखे ये कौन वर्ण क्या बेखे, ये तो तुम शिक्षा दी ही मान ली मन मोरे, गरीब दास तुम कोमल पुरुष और हमारा बदन कठोरे। अब जब कहते ना परमात्मा तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है मेरा, मेरा शरीर तो बहुत नूर का है। तब रामानंद जी जब उसने संपर्क में आए भगवान के स्पर्श हुआ, तब ने कहे कि आपने मेरी जो फड़क निकालनी थी मैं समझ गया, मैं छुआ छात गणी करूं था, और आपका आपका उद्देश्य है कि मैं ये ना करूं, आपकी यह शिक्षा मैंने प्राप्त वाली प्रभु, आज के बाद मैं यह छुआ छात नहीं करूंगा। और हे परमात्मा आपका शरीर तो बिल्कुल कोमल है और हमारा बदन कठोर है। वह फिर जचगी वह बात की जो कहे थे, भाई तेरे जैसे चाम का मेरा शरीर नहीं है, तो उसी समय स्वीकार कर लिया। अपुण्यात्माओं, आगे क्या बताते हैं, ये लंबी कहानी है लेकिन थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, समय का बहुत अभाव है, क्योंकि ये सत्यनारायण कथा या तो सारे दिन सुने सारे दिन और फिर भी नई इच्छा रह जाए और सुनाई जा, लेकिन अब धीरे धीरे हम उस समय के अनुसार इसको धीरे धीरे आपके हृदय में उतार देंगे और आपको परिपक्व कर देंगे, इसमें आप भी परमात्मा से परिचित हो जाओगे ऐसे धीरे धीरे। अब क्या होता है, रामानंद जी, अब रामानंद जी ने सोचा भाई बात तो सारी काटेगी कह रहे हैं, फिर परमात्मा ने, क्योंकि वो सारा सार्वजनिक करवाना था, किस किस के बात हुई, तो रामानंद जी से मन में प्रेरणा आई कि बच्चा और तो आपकी बात में मान गया सारी, पर न्यू बता आपने झूठ क्यों बोला। परमेश्वर ने कहा क्या झूठ बोला स्वामी जी गुरुदेव, कि आपने मेरे से नाम ले रखा है। हाँ जी आपसे मैंने दीक्षा ले रखी है, कोई प्रमाण बताइए क्या आपके। मैं तो एक कंठी देता हूं, कंठी गले में बांधन की, एक तुलसी के मनिये की मणके की है तेरे पास। परमेश्वर ने वह निकाल के दिखाई थी कि देख स्वामी जी यार रही आपने दी थी वह पंचगंगा घाट पे। पंचगंगा घाट पे हका, अरे वहां तो छोटा सा बालक था, 2.5 वर्ष का बालक, तू तो 5 वर्ष का बच्चा है, काफी अच्छी हाइट है तेरी। तो उसी समय परमात्मा ने दूसरा रूप बना लिया 2.5 वर्ष के बच्चे का, एक सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उस पर लेट गए जाकर के, देख स्वामी जी देखो मैं ऐसा था, सामने भी खड़े एक रूप में 5 वर्ष के बालक के रूप में, और दूसरे चारपाई के ऊपर देखा एक 2.5 वर्ष का बालक और लेटा हुआ है। अब रामानंद जी ने 6 बार तन्यू देखा, 6 बार न्यू देखा, 6 बार तो देखा जो 5 वर्ष के बालक के हाइट शरीर को, और 5 बार देखा उस 2.5 वर्ष के बालक को खाट पर लेटा हुआ चारपाई। आखिर में आंखें मलमल देखा कि मेरा धोखा लाग रहा हो। इतने में वो बालक उठा के परमात्मा ने सोचा ये मन के टक्कर दे से बुढ़े ने। अब वहां से उठा वो 2.5 वर्ष का बालक और उठ के परमात्मा में समा गया उसके देखते देखते। तब रामानंद जी फ्यूज हो गया, भैया तो सारी ये सच्ची बात है, ये कोई खास उद्देश्य है प्रभु मेरे साथ जो ऐसी लीला कर रहा है। फिर भी वो मन पुराना ज्ञान वो टिकन नहीं देता, नहीं बोला बच्चा मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, चल बैठ स्वामी जी कहा जाए एकांत में बैठेंगे। चले गए एक उस गंगा के किनारे, वहां 5-10-20 भगत और भी चले गए। जब वार्ता हुई परमात्मा ने कहा आप क्या पूजा करते हो कि मैं विष्णु जी को इष्ट मानता हूं। विष्णु परमात्मा ने कहा विष्णु जी तो नाशवान है, देवी पुराण 3rd स्कंद में पढ़कर देखिए। अब रामानंद जी तो पहले से ही कंठस्थ कर रखे थे पुराण और वेद और गीता, उसने 3rd स्कंद का नाम लिया कि उसमें लिखा है कि देवी पुराण में विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूप हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है, और मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही जी से प्रकट हैं, और हमारा तो आविर्भाव और त्रोभाव होता, हमारा जन्म मृत्यु होता है। शंकर भगवान बोले कि जब ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुआ तो क्या विष्णु आपकी संतान नहीं हुआ, विष्णु आपसे उत्पन्न हुआ तो क्या ब्रह्मा आपकी संतान नहीं है, अब दुर्गा और मैं भी आपका बेटा हुआ। रामानंद जी क्योंकि उसको तो याद थे, कहने लगे हाँ ऐसा ही लिखा है। फिर इतना नाशवान है तो विष्णु जी की पूजा कर रहे हो, और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक देखो, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा, जिन इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी नहीं करता। यानी काफी डिटेल से डिस्कशन हुई, परमात्मा ने बताया गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस ब्रह्म ने बोला है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, काल है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। अब रामानंद जी को तो याद थे, सारे बुद्धिमान को समझाना आसान होता है, जो परमात्मा बोला सारी स्वीकृति देता। जब ब्रह्मा विष्णु, जब विष्णु जी नहीं रहेंगे, श्री विष्णु का लोक नाश होगा तो तू आप कहां रहोगे। अब बात आ गई ठिकाने, ने बोला बच्चा बात तो तेरी सारी सच्ची है, पर आज तक ये किसी ने बताया तो कोई ना, अब तेरी बात पर विश्वास मेरा बहुत देर से दृढ़ होगा। परमात्मा बोले दृढ़ता मैं कर दूंगा अगर आप मेरा सहयोग दोगे। रामानंद जी कहने लगे कि बच्चा मैं तो समाधिस्थ होता हूं, कहते हैं प्राणायाम कर, योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। बाल ब्रह्मचारी था रामानंद जी और योग अभ्यास करा करता समाधिस्थ हो जाता था, लेकिन ऊपर 3 रास्ते आ जाते हैं त्रिवेणी, 3 रास्ते, उस तीन रस्तों पर जाकर के इसकी सूरत रुक जाती थी। आगे न्यो नहीं पता था कौन से जाना चाहिए। पुण्यात्माओं, आप कहीं जंगल में जा रहे हो और दो रास्ते हो जाए, आप उड़े फ्यूज हो जाओगे, कौन से बचा लो। और वहां तीन आप परमात्मा बोले आप समाधिस्थ होकर देखो। वो कहता था मैं योग अभ्यास करता हूं, मेरी सुरती बहुत ऊंची मंजिल में पहुंच जाती है। परमात्मा बोले लगाओ मंजिल, समाधि करके देखो, समाधिस्थ हो गए। परमेश्वर आगे साथ गए उसी बालक रूप में, और त्रिवेणी पर जब वो जाली उनकी आत्मा, जब कहा स्वामी जी ये तेरा अंतिम ठिकाना आ गया, ये सामने वाला जो रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, ये तेरे इस मंत्र ओम नाम से नहीं खुल सकता, ये सतनाम से खुलेगा। और ये रास्ता तेरा अब जो विष्णु जी के इष्ट रूप में तू उपासक उनकी उपासना कर रहा है, ओम ओम भागवते वासुदेव, तो इस रास्ते से जाएगा, आगे धर्मराज का लोक होगा, धर्मराज से तेरा अकाउंट होगा, उसके बाद तू विष्णु लोक में चला जाएगा, उससे आगे तेरी कोई पहुंच नहीं, और विष्णु लोक में अपने पुण्य खत्म करके तू फिर तेरा शिलाख योगियों आएगा। और ये सामने वाला ब्रह्मरंध्र मेरे पास जो मंत्र है सतनाम उससे खुलेगा, और आप कोशिश करो इसको खोल के। ने बोले जी मेरे तो नहीं खुलता मंत्र, 100 वर्ष हो गए इसकी खोलने के, 80 वर्ष हो गए मैंने इसकी चेष्टा करते, मेरे से नहीं खुल रहा। तो परमात्मा ने अपने सिमरण किया श्वास का, उस श्वास से सतनाम से वो ब्रह्म काल के लोक में जो विशेष लोक है काल का 21वां ब्रह्मंड, उसमें जाने का रास्ता पट दे खुल गया। सतगुरु खोल ले वज्र कपाटा, दास गरीब मेर सतगुरु की खोली वज्र कवाड़ी, ये वज्र की कवाड़ी खोल दी। जब आत्मा को ऊपर लेके गया, कहने लगे यो रे जिसको तुम निराकार बताते हो ये बैठा, ये ज्योत निरंजन काल जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, 1,00,000 मानव श्रीधारी प्राणियों को नित यहाँ आहार करता हो, तपस्या दिखाई। फिर पारब्रह्म के लोक को पार करके भौर गुफा से आगे सतलोक में प्रवेश किया। वहां जाकर क्या देखा कि कबीर जी दूसरे नीचे से बालक रूप में उनके साथ है, और ऊपर एक तकत के ऊपर विराजमान है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर देव जी, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। और कबीर परमेश्वर 5 वर्ष का बालक उठाकर एक चंवर उस परमात्मा के ऊपर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा ये है वो अविनाशी परमात्मा जो तकत पर बैठा, कबीर जी यहाँ के कोई गण होंगे, जैसी उनकी बुद्धि काम कर रही थी बालक की तरह। तो थोड़ी देर में क्या होते हैं कि वो तकत पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए, और बालक रूप भगवान जो कबीर जुलाहे रूप में यहां नीचे थे पृथ्वी पर उसी रूप में गए थे ऊपर, वो तकत पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर की कुर्सी पर, और जो परमात्मा दिखाई दे था वो सेवा करे नौकर की तरह कबीर भगवान का। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे यू क्या हो गया भाई, इस नौकर की भगवान पूजा रिगार्ड कर रहा है। उसी समय वो परमात्मा जो तेजोमय शरीर वाला उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहे हैं आदर के साथ। और परमात्मा बोले रामानंद जी चल नहीं चाहिए जा, ये है मेरा स्थान, मैं सतलोक का मालिक हूं, सारे ब्रह्मंडों का स्वामी हूं, और यहां आने के बाद देखिए कितने बच्चे हैं, ये सब परमात्मा के सुखी हैं, इनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, इनको जरा और मरण व्याप्ते नहीं। तहां वाचित चक्रित भया वो देख्या फजल दरबारे, कहते वहां मन चक्रित हो गया उस रामानंद का, जा देख्या फजल दरबार, और फिर वापस भेज दिया नीचे आकर देखा, तो वह समाधि जब उसकी खुली नींद सी, सामने परमात्मा कबीर जी बैठे हैं वही 5 वर्ष के बालक में के रूप में। तब रामानंद जी फ्यूज हो गया, वो सारी बकवाद चलेगी जो उसने वो अज्ञान ग्रहण कर रखा था, आंखें देख लिया। क्या बताते हैं, तावा चित चक्रित भया जब देखा फजल दरबारे, फजल माने उस दयालु भगवान का, उस रहम करने वाले परमात्मा का वो दरबार देखा। गरीब दास सिजदा किया हम पाए दीदार, गरीबदास जी कह रहे हैं रामानंद जी ने फिर सजदा करा नो, आये हे भगवान अब मैंने परमात्मा मिल गए, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। अब रामानंद जी कहां तो विद्वान पा करे थे, अन्यो कहे ए परमात्मा आप मेरे मालिक, और मेरा ज्ञान तो बालक जैसी बुद्धि का ज्ञान था जिसको मैं अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मान रहा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ब्रह्म कर्म किए नाश ग्रीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास के तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि और मेरा तक कर्म भ्रम सारा नाश हो गया। गरीबदास जी बता रहे रामानंद जी ने बोले तुम हो निज ब्रह्म वो तत् ब्रह्म तुम हो परम अक्षर ब्रह्म तुम ही हो मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे और उर्मे हमरे तीरी उरे उर कहते हैं सुन बे सुन से उस परले लोक सतलोक में भी आप ही हो और ये मेरे सामने भी आप ही बैठे हो। सुन बेस बिसुन से तुम परे उर से हमरे तीरी ग्रीब दास सर्वंग में अवगत पुरुष कबीर यानी सब जगह व्यापक है वो परमात्मा सब जगह। कोटि कोटि सिद्ध दा करे और कोटि कोटि प्रणाम ग्रीब दास अनहद अधर हम पर से तुम दाम। इब्ने गमन आपका लोक देख लिया आप सचमुच परमात्मा हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे ग्रीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। ओए ओए ओए। अब कह तो डांट मारा था बुढ़ला अरिब ने कहे सुन स्वामी कहते हैं बोलत रामानंद जी और सुन कबीर करतार और रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास कह रहे हैं सब रूप में तू ही बोलन हार तेरे बिना तो पत्ता भी ना ले परमात्मा तेरी ही शक्ति से सब जीव चल रहे हैं। तुम साहेब तुम संत हो तुम सत गुरु तुम हंसे गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे कहते तुम ही परमात्मा हो और तुम ही श्रेष्ठ संत हो और तुम ही एक हंस हो हंस माने जो कति विकारों से रहित होता है और तुम ही सतगुरु हो सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो और आपके बिना संसार में कुछ नहीं मालिक। मैं भक्ता मुक्ता भया मैं तो आपका भक्त मैं आपका दास मुक्त हो गया। रामानंद जी कह रहे 104 साल के ब्राह्मण विद्वान और उस 5 वर्ष के बालक को मैं आपका भक्त मुक्त हो गया मेरा तो टंटा कट गया। मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नाश गरीब दास अवगत मिल गए मेरी मिटगी मन की बांस या मन की भटकना मेरी कति खत्म होगी मेरा अग्रम मग्रम समाप्त हुआ। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। वेदों वाली बात क्लियर होगी परमात्मा ने खुद बताया कि गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पताल कह कबीर में ढूंढता फिर अपने हीरे माणिक लाल। अब रामानंद जी ने आंखों देखा जो बताया कि दोहू ठोड़ है एक तू होय होय वहां भी तू ही है यहां भी तू ही है और भया एक से दो और हम पापी प्राणियों के लिए मालिक तुम वहां से चलकर आए हो। बोलो सतगुरुदेव।